Om Shanti and good morning. दीदी ने अभी इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी. जब भी हम कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो हम लोग अक्सर परफ्यूम या डिओडोरेंट लगा के जाते हैं. तो किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना तो आम बात है, मजा तो तब है जब हमारी शख्सियत हमारी किरदार से ही खुशबू आए. ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि हम अपने बॉडी को तो डेकोरेट कर लेते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा मन कितना सुंदर है. वही इम्पोर्टेंट, वही मैटर करता है. तो हम यहाँ पे दो दिन से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं. हमारे नए नए अच्छे अच्छे टीचर्स ने हमको सुनाया और हमको अंदर से उमंग भी आता है कि कुछ चेंज हमको करना है, कुछ ना कुछ नया हमको अपनी लाइफ में जरूर करना है. तो ऐसे ही एक यंग लड़का था जिसको बहुत इच्छा थी कि वो बहुत जल्दी सक्सेस को अचीव करे. तो एक दिन रास्ते में जा रहा था तो एक किनारे पर एक फकीर एक साधु बैठा था. तो वो बोल रहा था उससे कि जो चाहिएगा वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा. तो वो यंग लड़का बड़ा आतुर हुआ कि ऐसी क्या बात है कि मुझे जो चाहिए वो ये दे देगा मुझे. तो उसके पास गया, बोला कि महाराज आप मुझे जो चाहिए वो दे देंगे? तो उन्होंने कहा हमें तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा. तो उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहता है मैं बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूं. तो कहता है ठीक है बन जाओगे, अपनी एक मुट्ठी आगे लाओ, आज मैं तुम्हें दो हीरे और मोती दूंगा जिससे तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो. तो उसने कहा अपना एक हाथ आगे किया ऐसे और उस महात्मा ने उसकी मुट्ठी के अंदर एक पेपर पे कुछ लिख कर रखा. कहता है ये मैं तुम्हें सबसे अमूल्य हीरा दे रहा हूं, ये हीरा है समय. तुम समय का जितना सदुपयोग अपने जीवन के अंदर करोगे और जिस चीज के पीछे समय दोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे अभी नहीं चाहे लेटर ऑन. तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ. उसने कहा अगर कई बारी मैं समय दूं फिर भी मेरे को सफलता नहीं मिले तो क्या करूं? तो उसने कहा दूसरी मुट्ठी आगे लाओ. तो उसने दूसरी मुट्ठी आगे करी तो उसने कहा ये दूसरा मोती मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये है धैर्य, पेशेंस. जब समय देते हुए भी तुम्हें सफलता ना मिले तो धैर्य रखना. तो धैर्य रखोगे और समय फिर दोगे तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी, है ना. तो हम लोग यहां पर आए हैं तो एक चीज तो पक्का है कि हम लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं. चाहते हैं नहीं, सभी लोग बताइए, हाँ या नहीं, है ना. सभी को इच्छा है तभी हम यहां पर बैठे हैं, चार बजे के योग के अंदर भी आ रहे हैं. जो मॉर्निंग स्केड्यूल हम लोग नॉर्मली उठते भी नहीं थे उसके बावजूद भी हम यहां पर आ जाते हैं. तो अंदर से कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा है. हम समय भी दे रहे हैं. अब समय के बाद एक चीज और हमें बना के रखनी है, वो है धैर्य. और ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम यहां से जाएंगे ना तो जो हमारा ऊपर वाला टेम्पो है वो धीरे 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 ऐसे आ जाता है ना. तो वो नहीं आने देना, बिल्कुल भी वो नहीं आने देना. अपना उत्साह सदा बना के रखना, अपनी उमंग बना के रखना. और ये नहीं कि यहाँ पे सुना एक पांच दिन ब्रह्मा कुमारी के यहाँ सुना, हमने समय दिया, अगले साल फिर हम चार जोने को आएंगे. नहीं, अगले साल आप लोग और ऐसे अपने साथ लोगों को लेके आना जो आपकी तरह फिर परमानेंटली चार्ज होके जाए. परमानेंटली चार्ज की तो ब्यूटी है ना, तो वो हमको जरूर करना है. और ये दोनों चीजें कब हो पाएंगी? जब हम अपने अंदर यथार्थ परिवर्तन लाएंगे, अपने अंदर इम्पोर्टेंट चेंज लाएंगे. चेंज हमको किस चीज में लाना है, किस चीज में लाना है चेंज, किस चीज में लाना है चेंज? जी अपने अपने थॉट्स के अंदर, अपने शख्सियत के अंदर सारी चीजें लाना है. चेंज हमको सबसे इम्पोर्टेंट लाना है अपने मन के अंदर. जहां मेरा दिल और मेरा मन जाता है वहां मेरी पर्सनालिटी, मेरे सारे कर्म, मेरे विचार उसी तरफ डाइवर्ट होते रहते हैं. एक बारी की बात है कि एक कुम्हार था. कुम्हार बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था. तो एक दिन उसने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई. चिलम जो होती है ना, जो हुक्का गुड़गुड़ाने के लिए, उसको डेकोरेट किया और बहुत सुंदर चिलम बना के उसे साइड में रख दिया.
कुछ टाइम बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने उस चिलम को लिया और उसको तोड़ के साइड में फेंक दिया। तो उसके बराबर में मिट्टी थी, तो मिट्टी उससे बोली कि कुमार तूने क्या किया? उसने कहा कि मेरा मन बदल गया, मैं चिलम नहीं, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए उससे सुनो क्या बोली, उससे बोली कि कुमार तेरा तो मन बदल गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुमार ने कहा तुम ऐसा क्यों कहती हो? उसने कहा पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी, है ना। तो परिवर्तन हमें किस में लाना है? अपने कहां पे लाना है? जोर से बोलिए, मन में लाना है। अपने मन को यहां पर समझा के जाइएगा। एटमॉस्फेयर अच्छा है, लेक्चर्स अच्छे हैं, लेकिन अपने मन को एम्पावर करके जाना है। ऐसा नहीं, बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन होता नहीं है वहां जाके, हाँ वहां जाके गड़बड़ हो जाती है, वहां जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा कह देता है, तो ऐसा हमारी लाइफ के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है, ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म के बारे में हम लोग नई नई बातें सुनते हैं, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग परमात्मा को याद करें, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वो मेडिटेशन और योग की प्रक्रिया कहलाता है। लेकिन मैं जब बचपन में यहां पर आया था, मेरी उम्र केवल 8 साल की थी, छोटे बच्चे थे हम लोग, मुझे वो मेमोरीज अभी भी ध्यान में आती हैं, और मदर फादर भी डॉक्टर हैं, तो यहां पर आए, घर में गए तो ब्रह्मा कुमारीज के यहां से आए, तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, 80s की बात है, रेवोल्यूशन हुआ कि बच्चे ब्रह्मा कुमार बन रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, आगे कुछ अचीव नहीं करेंगे, बस यही कर देंगे, सब छोड़ देंगे, तुमने क्या किया। तो मैंने ये सोचा कि आध्यात्मिकता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आध्यात्मिकता को भौतिक रूप से मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों फॉलो करूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को आत्मा मानने की जरूरत है। मैं तो अपनी लाइफ को अच्छी तरह लीड कर रहा हूं, मेरे माता पिता ने मुझे सब संसाधन दिए हैं, भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं, तो क्यों मैं इसको समझूं? फिर मेडिकल स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ, MBBS के अंदर। फर्स्ट डे जब मैं जा रहा था तो अपने पापा को मैंने बोला कि मैं एक बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं। 1992 14 जुलाई की बात है, तो उन्होंने अपनी बाहों में भर के बोला कि बेटा एक अच्छे इंसान बन जाओ तो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट तो तुम जरूर बन ही जाओगे। तो मैंने कहा आप ठीक बोलते हो। मुझे विविड मेमोरीज हैं उस टाइम की, वो रेगुलरली कर रहे थे, हम भी क्लास में जाते थे। तो मैंने सोचा कि इस आध्यात्मिकता को साइंटिफिक रूप से भी हम सब लोग समझना चाहिए कि क्यों मैं आत्मा हूं, साइंस क्यों कहती है कि मैं अपने आप को आत्मा समझूं, और अगर आत्मा हूं तो परमात्मा कौन है और उसको मैं कैसे याद करूं, क्या यथार्थ वे है और उसका मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, उसको मुझे यथार्थ रूप से समझना चाहिए। उसको हमने कुछ कुछ स्टडी करने की कोशिश की, साइंटिफिक फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग रूप से स्टडी करके उसको आपके समक्ष आज हम रखेंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद MBBS ना भी किया हो, जो डॉक्टर ना भी हो मुझे मालूम है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये इतनी सिंपल और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है जो आपके कपाट मन के एकदम खोल देगी कि हाँ मुझे ये समझ में आया कि क्यों मैं आत्मा हूं। आज देखो साइंस ने हमको सब कुछ दिया है, साइंस हैज गिवन अस एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आज नई नई दवाइयां हमारे पास हैं, नई नई मेडिसिन हमारे पास हैं, लेकिन आज साइंस ने हमको कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं दी जिसके द्वारा हम लोग अपने मन का परिवर्तन कर सके। बनाई है कोई मेडिसिन या नहीं? कोई भी मेडिसिन नहीं है। एक दुखी व्यक्ति को खुश कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। चाहे अच्छी से अच्छी दवाई दे दो, हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाते, तो कौन सी साइंस? साइंस ने हमको इतनी एडवांसमेंट दी कि एक रिमोट कंट्रोल हम लोग दबाते हैं तो यहां बैठे हम लोग अमेरिका बात कर लेंगे, यहां बैठे हम ऑस्ट्रेलिया बात कर लेंगे। लेकिन आप लोगों में से मैं पूछता हूं कि आज हमको इतना समय है कि हम अपने आप से, अपने मन की गहराइयों में जाके अपने आप से बात कर सकें एक मिनट के लिए? आज हमारे पास अपने परिवार में इतना समय है कि अपने बच्चों के साथ भी हम लोग 2 मिनट बात कर सकें? बच्चों को आईफोन दिया, आईपैड दिया, उनको हाई टेक्नोलॉजी तो हमने सब कुछ दे दी, लेकिन आज हाई टच जो है वो हमारी लाइफ से जा चुका है, हमारी लाइफ से कंपैशन, हमारी लाइफ से केयर जो है वो खत्म हो चुकी है। सब कुछ है, मॉडर्निज्म है, भौतिकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म जो है वो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली खत्म होता जा रहा है। आज साइंस ने हमको इतना सब कुछ दिया कि आज हम लोग मंगल पर पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड मून एंड वी आर अबाउट टू रीच मार्स ऑल्सो। तो मंगल में तो हम जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में मंगल है ये हमने कभी क्वेश्चन अपने आप से पूछा? ऐसा हमको उत्तर ही नहीं मिल पाता। ना खुशी है, ना सुख है, ना चैन है, ना शांति है। आज हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, पूरी दुनिया तो गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स तो मेल्ट कर रहे हैं, सब कुछ गर्म होके पिघल रहा है, लेकिन ये केवल दुनिया के गर्म होने की बात नहीं, ये हमारे एटीट्यूड्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे स्वभाव के गर्म होने की भी बात है। एक एक सेकंड में एक दूसरे से हम लोग लड़ पड़ते हैं, एक एक सेकंड में हमको गुस्सा आ जाता है, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करें समझ में नहीं आता। एंगर को हम लोग अपनी वेपन की तरह हम लोग यूज करते हैं। हमारा प्रिंसिपल पता है आजकल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है माय वे इज द राइट वे, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो तनाव आता जाता है, तनाव आता जाता है। तो साइंस ने हमको इतना कुछ दिया, लेकिन आज हमारी लाइफ में हेट्रेड आ गई है, हमारी लाइफ में पीसलेसनेस है, डिसहार्मनी है और एंगर है। आप देखो, हम मेडिकली और भौतिक रूप से इतने एडवांस्ड हैं, लेकिन ऐसा लेवल ऑफ टेररिज्म, ऐसा गंदा माइंड, आप लोगों ने कभी इमेजिन भी किया था कि हम ऐसे संसार में आ जाएंगे जहां एक क्षण के लिए भी हमको दूसरे पल की परिकल्पना भी नहीं होगी कि कहां पर क्या होगा। हम लोग अभी लास्ट 3 महीने पहले हम लोग काठमांडू गए थे। काठमांडू में बड़े बड़े गैदरिंग्स थे, वहां के VIPs, वहां के IPs, हमने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा। वहां पे मल्टी मिलियनर्स भी थे, हमने पूछा कि जब आपके देश में भूकंप आया था तो आप में से किसको आपकी धन, आपकी दौलत, आपका घर, आपका बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ियां, किसको याद आया? 2-2 हजार, 10-10 हजार की गैदरिंग थी, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त केवल हमको एक चीज की इच्छा थी कि हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हमारी भौतिकता सब खत्म हो चुकी थी। तो साइंस ने आज हमको सब कुछ दिया, लेकिन आज हम लोग अपने आप से ही, अपने परिवार से ही बहुत बहुत दूर हो चुके हैं। और आध्यात्मिकता की बात करें, आध्यात्मिकता अलग डायरेक्शन में जा रही है, भागती चली जा रही है। मंदिर जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मस्जिद जाते हैं, पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में सुख और चैन नहीं आ पाता। गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता। क्राइस्ट के पास जाते हैं, जीसस के पास जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परिवर्तन आए वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह। एक लंगड़ा व्यक्ति था और एक अंधा व्यक्ति था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वो दोनों एक दिन जंगल में जा रहे थे, तो सडनली सामने क्या हुआ, आग लग गई। अब जैसे ही आग लगी तो उस लंगड़ा व्यक्ति जो है वो अंधे को चिल्लाकर बोला, अरे आग लगी, आग लगी, आग लगी, भागो भागो भागो। लंगड़ा व्यक्ति भाग ही नहीं सकता था। अंधा व्यक्ति को जैसे ही उसने बोला आग लगी, आग लगी, तो वो भागने लगा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि किस डायरेक्शन में आग लगी है। तो वो आग की तरफ भागता गया और वो आग में झुलस गया। और लंगड़ा व्यक्ति था, उसको ये तो पता था सामने आग लगी है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी भागने की। तो उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाया, इसलिए वो भी आग में झुलस गया। और समझदारी क्या होती? समझदारी क्या होती? अगर अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को अपने ऊपर बिठाकर सही डायरेक्शन में चले जाता तो उस आग से दोनों बच जाते। तो आज क्या हो रहा है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का? आज यही हमारे साथ हो रहा है। आध्यात्मिक बूम हो रहा है, चैनल्स पे चैनल्स आए जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होता ही नहीं है, अपने अंदर चेंज होता ही नहीं है। और इसी तरह साइंटिफिकली नई मशीन्स, नई गैजेट, सब कुछ। चेन्नई में फ्लड आया, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, कहता है कौन सी हॉस्पिटल यार, अपोलो के अंदर काम करता हूं, पानी का पानी भरा हुआ है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सारी मशीन्स ठप है, हमारी सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट एक सेकेंड के अंदर खत्म कर देता है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम मानव ने ही, हम सब लोगों ने ही, इस पूरी दुनिया ने ही आउटर नेचर को भी स्क्रैच करके डिस्टर्ब कर दिया है और हमारे इनर नेचर को भी स्क्रैच करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। आउटर नेचर अपने अर्थक्वेक्स और नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में रिटेलिएट कर रही है और हमारी इनर नेचर हमको पीसलेसनेस, हमको अशांति के रूप में हमारे लिए दुख और अनकंफर्टेबिलिटी लाए जा रही है। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और तभी हमारी जीवन के अंदर खोखलापन, हमारी जीवन के अंदर एम्प्टीनेस, हमारे जीवन के अंदर ऐसी आप कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं ना, ऐसे लगता है जैसे जलेबी जैसी जिंदगी जो है वो उलझ गई है ना, कॉम्प्लिकेशन हमारी लाइफ के अंदर हो गई है। और हम लोग बड़े मजे में ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बात बोलते हैं और वो क्या बात बोलते हैं कि अब जलेबी सी उलझी गई है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगाई ली जाए, है ना। तो जीवन में कुछ ना कुछ मिठास भरनी चाहिए, नहीं भरनी चाहिए, भरनी चाहिए ना। तो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अपनी माइंड पावर, अपनी स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करना बहुत आवश्यक हो जाता है और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपल सिंपल छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, प्रैक्टिकल चेंजेस लाने हैं, सिंपल प्रैक्टिकल टूल्स को यूज करना है जिसके द्वारा हमारी लाइफ सिंप्लीफाई और इजी बन जाए। एक बार एक राजा था, एक राजा के पास, उस बहुत दुखी था, उसको उसकी प्रजा उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसको धन का बहुत लॉस हो रहा था। तो उसके पास एक महात्मा आया, वो महात्मा बोला राजा से कि महाराज मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, उससे आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा और शांति आ जाएगी। उसने कहा बताइए। उसने कहा आप ऐसा करिए कि आपको जो भी कुछ दिखे, आपको सामने जैसे भी कुछ लगे, उसको हरा पेंट करा दीजिए, हरा रंग। जितना आप हरा देखेंगे उतना आपके जीवन के अंदर सुख और शांति आती जाएगी। तो राजा ने कहा पक्का कहते हो ऐसा? उसने कहा हाँ मैं पक्का कहता हूं, आप करके देखिए। तो राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सभासदियों को बुलाया और कहा कि मेरे पूरे महल को हरा कर दो। तो उन्होंने हरा कर दिया, पहले तो हैरान हुए, जैसे ही हरा किया उसके जीवन में सुख और शांति थोड़ी थोड़ी आने लगी। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर वो महल से एक दिन बाहर निकला, उसे दिखे रास्ते दिखे, उसने कहा रास्तों को भी हरा कर दो। उसकी आज्ञा अनुसार रास्तों को भी हरा कर दिया। आगे गए तो प्रजा मिली, प्रजा के घर दिखे, घर दिखे तो उसने कहा कि इन घरों को भी हरा कर दो। उसके जो सिपाह थे और सब लोगों ने उन घरों को भी हरा करना चालू कर दिया। तो वो जहां जाता सब कुछ हरा ही हरा करा देता। कुछ टाइम तक तो सब लोग इसको सहन करते रहे, फिर परेशान हो गए, कहते हैं यार ये तो बड़ी परेशानी हो गई, राजा अपने सुख और सुविधाओं के लिए हम पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को ही हरा हरा कराए जा रहा है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो वो महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा कि आपने ऐसी कौन सी सलाह दी जो हमारे लिए अभिशाप बन गई है। तो महाराज के पास गए कि महाराज मैंने आपको बोला था कि आपके आगे जो कुछ दिखे उसे हरा करा दीजिए। तो उसने कहा जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर दिया। तो उसने कहा इसका एक और भी तो तरीका था। उसने कहा क्या तरीका था? उसने कहा आप केवल हरा ही चश्मा पहन लेते, अगर आप हरा चश्मा पहन लेते तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देने लग जाता है ना। अच्छा ताली क्यों बजाई आप मुझे बताओ, क्यों बताई? क्योंकि जो हमने बोला ना माय वे इज द राइट वे, हम अपनी खुशी और शांति के लिए हर व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, करते हैं ना पूरे दिन। ये सुनता नहीं है, ये बात नहीं करता, ये समझता नहीं है, इसको देखूंगा मैं टाइम पे सीधा कर दूंगा, और सीधा कर ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया ही गोल है, कैसे सीधा कर सकते हैं किसी को। हम केवल अपने विचारों को सीधा कर सकते हैं और अपने मन को हम सीधा कर सकते हैं, अपने मन को हम समझा सकते हैं। तो यहां पर जब हम आए हैं ना, तो यहां पे ये नहीं होना कि हाँ सिस्टर ने बात सुनाई, भाई ने बात सुनाई, ये इसके लिए बहुत बढ़िया बात है ना। ऐसा होता है ना, काश वो भी यहाँ पे होता, वो इस बात को समझ लेता, अंदर से ही हमको फीलिंग आती है। ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी मैं समझ रहा हूं वो परमात्मा मेरे अपने लिए मुझे डायरेक्शन दे रहा है। समझते हैं सभी लोग इस बात को या नहीं, है ना? क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, बहुत अपोजिशन हुआ, हमारी लौकिक बहन भी मोनिका, हमारे माता पिता भी जो दोनों डॉक्टर्स हैं, खूब अपोजिशन हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम छोटे चेंज अपनी लाइफ के अंदर करते गए, हमारी लाइफ के अंदर खुशी, शांति और बैलेंस ऑटोमेटिकली आती गई। परमात्मा को हमने अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर हमने स्पेयर व्हील की तरह यूज नहीं किया। हम सब लोग क्या करते हैं, परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं। कहां पे होता है स्पेयर व्हील, डिक्की के अंदर पड़ा होता है, जैसे ही जरूरत हुई ना तो क्या किया, टायर को फिट कर दिया। ऐसे परमात्मा तुम स्पेयर व्हील हो, हे परमात्मा अरे परेशानी आ गई तुमने क्या कर दिया, इतना कर दो मैं वैष्णो देवी आऊंगा, इतना कर दो मैं साईं के मंदिर आऊंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैंने ये मन्नत मांगी, स्पेयर व्हील की तरह यूज करना। लेकिन हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज में केवल एक बात सीखी, एक बात सीखी, परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, स्टीयरिंग व्हील की तरह जब हम लोग यूज करेंगे ना, तो जिसकी गाड़ी का, जिसकी नाव का जो नाविक है, जो खिवैया है, वो परमात्मा है, तो वो हिलेगी डुलेगी तो सही, लेकिन डूबेगी या नहीं डूबेगी, डूब ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है कि वो नाव किसी भी तरीके से डूब जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये है बात 1992 की, मेरे डिसेक्शन हॉल की, एनाटमी की। एनाटमी में डिसेक्शन हॉल के अंदर हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सेन गुप्ता। उनसे मैंने पूछा, जब मैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट कर रहा था, हम लोग सीखते हैं डिसेक्शन को, मैंने कहा सर एक बात बताइए, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं डिसेक्ट करता हूं, इसकी आंख है ये देख नहीं रहा, इसके हाथ है ये हिल नहीं रहे, इसका मन है ये सोच नहीं रहा, इसका दिल है ये धड़क नहीं रहा, इसके पांव है ये चल नहीं रहा, इसके मुंह है, इसकी जबान है ये हिल नहीं रही, इसके अंदर क्या चीज नहीं है जो इसको लिविंग बॉडी से डेड बॉडी बना देती है। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। मेडिकल स्कूल के अंदर जब लोग एंटर करते हैं ना, तो फर्स्ट प्रोफेशनल के अंदर हम लोग एनाटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं। तो एनाटमी में उन्होंने मुझे आंसर दिया कि बेटा, उन्होंने बिठाया प्यार से, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके अंदर वायु नहीं है। तो उस समय हम लोग बच्चे थे, मैंने कहा अच्छा प्राण और वायु, तो मैंने कहा सर वो प्राण और वायु कैसे इस चीज को मैनिफेस्ट करता है जो लिविंग बॉडी को डेड बॉडी बना देता है और डेड बॉडी को लिविंग बॉडी बना देता है। तो उन्होंने कहा ये एक इंट्रिकेट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ अपने यंग एज के अंदर कि साइंस ने हमको ट्यूबुलर विजन दी है। हम लोग शरीर की बीमारी को डायग्नोस करते हैं, शरीर को ही हम लोग देखते हैं, शरीर को ही हम लोग डेकोरेट करते हैं, शरीर को ही हम लोग दवाई देते हैं, और जब शरीर खत्म हो जाता है तो उसी को हम लोग जला देते हैं या उसको हम दफना देते हैं या खत्म कर देते हैं, और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हम शरीर हैं और यही हमारी एक्चुअल रियलिटी है। तो साइंस जो है वो ये कहती है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स अर्थात ह्यूमन इज द बॉडी द ह्यूमस and being is the psyche, the soul, the spirit, the consciousness, the God spot or whatever we want to call it as. इन तीनों का collective manifestation जो है, जिसको हम consciousness कहते हैं, वही हमारी आत्मा, हमारी being, हमारी psyche कहलाता है। अब आपको इसकी practical evidence चाहिए कि क्यों हम माने कि हम शरीर नहीं, हम लोग एक आत्मा है। तो फर्स्ट एविडेंस जो हमारे पास साइंस कहती है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, चार पांच एविडेंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, वो है बाय लॉजिक। बाय लॉजिक, लॉजिक आता है वही जो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा। अब सामने बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी मर्सिडीज हो, लेकिन गाड़ी की ब्यूटी कब आती है आप लोग बताइए, गाड़ी की ब्यूटी कब आती है, जब उसके अंदर कौन बैठेगा, जब उसके अंदर कौन बैठेगा, ड्राइवर बैठेगा। जैसे ही ड्राइवर बैठेगा गाड़ी चलेगी, गाड़ी का हॉर्न भी चलेगा, बजेगा, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी फंक्शनल हो जाएगा, गाड़ी की सारी ब्यूटी जो है उसके सारे ऑर्गन्स निखर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर बाहर आता है, वो गाड़ी क्या होती है, एकदम डेड बॉडी की तरह हो जाती है और वहां पर खड़ी हो जाती है। इसी तरह हमारा शरीर भी जो है, हम लोग कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड इज वेरी सिक, ये लिविंग बॉडी है, ये टर्मिनल इलनेस है, लेकिन हम उसको कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड, उनको ये बीमारी है। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने प्राण छोड़ देता है या त्याग देता है, वो मिस्टर एक्स वाई जेड से क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, वो अपनी शरीर की आइडेंटिटी को लूज कर जाता है। तो कोई ना कोई चीज तो है जो उसके अंदर से सडनली उड़ जाती है, उसको हम नाम नहीं देते, उसको हम आत्मा भी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं कोई एंटिटी है जो उसके अंदर से चली जाती है। लेट इट बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, लेट इट बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एविडेंस जो हमारे सामने वो क्या आती है, सेकेंड एविडेंस आती है द इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। दिस इज वन ऑफ द सेकेंड इनडायरेक्ट एविडेंस। डॉक्टर जेम्स बी टकर की बहुत फेमस किताब है ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ, दिस इज ब्यूटिफुल बुक बाय डॉक्टर जेम्स बी टकर। उसमें एक एक्सपर्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसमें एक बच्चे की स्टोरी वो बताते हैं। वर्मोंट एक जगह है जहां पे एक बच्चे का नाम था सैम। वो बच्चा केवल 2-3 साल का था जब उसकी मां, छोटी सी मां, उसके डायपर को चेंज कर रही थी एक दिन, ध्यान से सुनिएगा। तो वो बच्चा अपनी मां से बोला, कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मैं तुम्हारे डायपर को चेंज किया करता था। तो मां एकदम हैरान हो गई कि छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे क्या कर सकता है। वो 2 साल का बच्चा इन अ पिक्चर ऑफ 20 अपने नाना जी की पिक्चर बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता था। उनकी सारी हैबिट्स उस बच्चे के अंदर थी, उनके सारे अकाउंट्स, उनके सब डिटेल्स उसको एग्जैक्टली और क्लियरली विविडली ध्यान थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तब हो सकता है जब उस आत्मा ने वो शरीर छोड़ा हो, वो संस्कार लेकर दोबारा उसने पुनर्जन्म किसी इसी आत्मा के रूप में लिया हो। अदरवाइज साइंस हैज नो एक्सप्लेनेशन फॉर अ 2-year-old चाइल्ड टू बिहेव लाइक दिस। और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, कई बार हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं कि कई बच्चे बहुत ट्रेंड म्यूजिशियंस पैदा होते हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। देखा है सभी ने या नहीं देखा है ना? कई बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं, जैसे आजकल आप टेलीविजन में देखते हैं, जो इंटेलेक्चुअली हर चीज का जनरल नॉलेज इतनी एडवांस है वो सब कुछ बता देंगे। कई बच्चे इतने एडवांस होते हैं कि वो अपनी IIT का एग्जाम भी 12-13 साल के अंदर पूरा कर लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मम्मी डैडी तो इतने नॉलेजेबल नहीं है, उस बच्चे ने इतनी पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार और वैल्यूज वो कैरी करते हैं, वो वैल्यूज वो बच्चा लेकर पुनर्जन्म लेता है, जिसको कहते हैं इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। दैट अगेन टेल्स यू कि शरीर तो हमारा खत्म होता है, लेकिन एक एंटिटी हमारे अंदर से ऐसे जाती है जो हमारे साथ हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज साथ में ले जाती है। कोई भी एंटिटी हो सकती है, अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क, उसको हम नाम नहीं देते। सेकंड स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस एंड न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स और इसके इंसिडेंट्स हैं जो आप इस किताब के अंदर भी, आप इंटरनेट पे भी टाइप करेंगे वो आपको मिल सकते हैं। फिर थर्ड एविडेंस में हम लोग आते हैं, थर्ड एविडेंस आती है आउट ऑफ द बॉडी एंड नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। दिस इज द लेटेस्ट, आप स्लाइड्स पे ही फोकस रखिएगा क्योंकि बहुत सुंदर और डायरेक्ट एविडेंस जो हमारे सामने आई है, ये 2014 की एविडेंस है। दिस एविडेंस कम्स बाय डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर। ये डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के फेमस न्यूरोसर्जन है, फेमस न्यूरोसर्जन। इनको पिछले 20-30 साल से बताया गया, इनको समझाया भी गया, एविडेंस भी प्रस्तुत की गई कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के अंदर कि हमारे शरीर की जो एंटिटी है वो आत्मा है, लेकिन ही नेवर यूज टू बिलीव इन दैट। लेकिन लेटली क्या हुआ, दिस जेंटलमैन ही गिव्स द मोस्ट क्रेडिबल अकाउंट एवर फॉर द प्रेजेंस ऑफ आफ्टर लाइफ और प्रेजेंस ऑफ सोल इन आवर लाइफ। हाउ? बिकॉज दिस जेंटलमैन, दिस सर्जन सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये व्यक्ति 7 दिन डीप कोमा के अंदर रहा। 7 दिन जब ये व्यक्ति डीप कोमा के अंदर रहा, ड्यूरिंग हिज कोमा जब इनके ब्रेन वेव्स प्रैक्टिकली फ्लैटन हो रहे थे, इनका हिमोडायनेमिक ग्रॉस इंस्टेबिलिटी थी, ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस ऑन वेंटिलेटर पे थे, उस टाइम के अंदर इनको विविड जर्नी ही एक्सपीरियंस इनटू हिज आफ्टर लाइफ। नॉट ओनली दैट, अपने डीप कोमेटोस स्टेज के अंदर इनकी बॉडी के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, क्या इनको दवाई दी जा रही है, क्या इनके घर के अंदर हैपनिंग हो रही है, एवरीथिंग ही वॉज एबल टू रिकलेक्ट एंड इंस्पेक्ट. एंड ही हैज रिटन अ ब्यूटिफुल बुक विच इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ हेवन टू राइट ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ. इन दैट बुक ही सेज दैट द एक्सपीरियंस ऑफ आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ इन्होंने इसलिए नाम दिया जो हमारी यानी बियॉन्ड दिस बॉडी जो हमारी आफ्टर लाइफ है, इट वॉज सो रियल एंड एक्सपेंसिव कि एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस. कहते हैं ये सर्जन जो कि एक्टिव न्यूरोसर्जन है, जो हाईली साइंटिफिक पर्सन है, वो अपने मुंह से बोला कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इतना रियल और पावरफुल था कि जो मेरे प्रैक्टिकल और इस शारीरिक लाइफ रही है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है. इन्होंने कहा द फैब्रिक ऑफ आफ्टर लाइफ इज प्योर लव एंड हैप्पीनेस. अर्थात जो हमारी आत्मा का जो रूह है, जो उसका फरिश्ता का स्वरूप है, उसका फैब्रिक ये भौतिक शरीर नहीं है, केवल प्यार का एक रूप है. एंड इन आफ्टर लाइफ ऑल द कम्युनिकेशन इज टेलीपैथिक. उसके अंदर हमको बोलने की जरूरत नहीं होती. जैसे मेडिटेशन में आप देखते हैं ना, हम लोग कुछ भी उच्चारण नहीं करते, हम लोग मेडिटेशन के अंदर केवल दृष्टि के द्वारा, अपनी टेलीपैथी के द्वारा अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के रूप में पहुंचा सकते हैं. ये पावर ऑफ मेडिटेशन है. तो ये साइंटिफिक व्यक्ति बोलता है द फैब्रिक ऑफ आफ्टर लाइफ एंड कम्युनिकेशन ऑफ आफ्टर लाइफ इज ओनली टेलीपैथिक. देर इज नो नीड ऑफ स्पोकन वर्ड्स नॉर इवन एनी सेपरेशन बिटवीन सेल्फ एंड एनीथिंग हैपनिंग अराउंड यू. दिस वॉज द मोस्ट क्रेडिबल अकाउंट विच वॉज पब्लिश्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स कॉल्ड प्रूफ ऑफ हेवन. अनदर साइंटिस्ट को ऑपरेट किया गया, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, हु हैड अ लार्ज एनिरिज्म ब्रेन के अंदर, मेजर डिजीज थी उसके अंदर. उसमें उनको उनके ब्रेन वेव्स को फ्लैटन कर दिया गया, उनके ब्लड को प्रैक्टिकली ड्रेन किया गया, और ऐसे समय पे जब उनकी कंप्लीटली लाइक डेथ हो जाती है, उनके ब्रेन के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की गई, जब उनके ब्रेन कुछ भी रिसीव करने की स्थिति के अंदर नहीं था. When that person after 15 days regained consciousness, उस व्यक्ति ने क्लियर एंड विविड डिस्क्रिप्शन दिए कि व्हाट वाज बीइंग डन ऑन माय बॉडी, मेरे शरीर पे आपने क्या क्या किया. और ना केवल ये, उसने ये भी बताया कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी और मैं 15 दिन वेंटिलेटर पे था, तो मेरे घर में मेरे इस कजन की डेथ भी हुई है, आप इसको इंक्वायर करिए. हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज ऑन अ वेंटिलेटर टू गिव सच ब्यूटिफुल अकाउंट्स ऑफ हैपनिंग इन द यूनिवर्स. This is possible जब कोई ना कोई entity है which can exist beyond this body also. And now the whole evidence is pouring in, जिसमें science कहती है that near death experiences and out of the body experiences can be considered as a scientific evidence for existence of soul. So this is the third and a very powerful evidence that suggests you that कोई ना कोई शक्ति तो है जो मेरे इस शरीर से भी बाहर मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है. और लास्ट एविडेंस आती है, डायरेक्ट एविडेंस, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं गॉड स्पॉट इन ब्रेन. इसमें उन्होंने कार्मेलाइट नंस को लिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनको डीप मेडिटेशन के अंदर बिठाया गया. डीप मेडिटेशन के अंदर जब उनको बिठाया गया, तो बाय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड इल्यूमिनेशन स्टडीज उन्होंने देखा कि पूरे ब्रेन के अंदर एक एरिया है जो डिस्टिंक्टली इल्यूमिनेट होता है, बाय इल्यूमिनेशन, जो इस पूरे मेडिटेशन के अंदर मोस्ट एक्टिव दिखाया गया है. एंड सरप्राइजिंगली वो मोस्ट एक्टिव एरिया वॉज जस्ट एडजेसेंट टू द ओनली सिंगल अनपेयर्ड ऑर्गन ऑफ अवर ब्रेन. आप जानते हैं हमारा ब्रेन का केवल एक ही ऑर्गन है. ब्रेन में हर चीज दो होती है, केवल एक पार्ट है ब्रेन का जो सिंगल होता है, वो है हमारा पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड के जस्ट एडजेसेंट उन्होंने दिखाया लोकस ऑफ गॉड स्पॉट, जो उन्होंने नाम दिया लोकस ऑफ सोल, लोकस ऑफ साइकी. और इसको अगर हम लोगों ने इतिहास के रूप से स्टडी किया, तो फ्रेंच फिलोसफर जो रेनी डिस्कार्टिस थे, उन्होंने भी इसको बहुत टाइम पहले, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं भी थी, तब भी उन्होंने इस पीनियल ग्लैंड के एडजेसेंट पार्ट को कहा था दिस इज द सीट ऑफ सोल इन अवर बॉडी. आत्मा का निवास स्थान ये हमारे बॉडी के अंदर है. So this is one of the powerful evidence. And not only this, this particular gland has a powerful brain chemical called DMT, dimethyltryptamine, and it induces a person into psychedelic and mystical experience. Arthat, jab hum deep meditation mein jaate hain, to ye gland aur ye chemical large matra ke andar release hota hai, humko mystical experience mein le jane ke liye. To isko stimulate karne wala jo most powerful center hai, focus hai, wo just adjacent to the pineal gland. So lot and lot of evidence. तभी आप देखेंगे कि आत्मा का जो surface landmark है हमारी body में वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? तिलक के रूप में हमेशा यहाँ पर दिया जाता है. तिलक आप कभी भी नहीं देखेंगे कि पेट पर लगाया जाएगा या छाती पे लगाया जाएगा. जब भी आत्मिक स्मृति का तिलक कहीं पर भी आप जाएंगे वो कहाँ पर दिया जाता है? हमेशा in front of forehead, क्योंकि pineal gland का जो surface landmark है वो यहाँ पर होता है. So more and more evidence now tells us that consciousness is an entity that is separate from the body. Consciousness can function outside the body and it is our body जो हमारी consciousness के function को limit करती है. तो एक चीज तो स्पष्ट हुई कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी बॉडी के पार्ट्स को तो हम जानते हैं, लेकिन आज हमने किसकी एनाटॉमी को जाना? किसकी एनाटॉमी को जाना? जोर से बताइए. आत्मा की एनाटॉमी को जाना. आत्मा तीन पार्ट्स में फंक्शन करती है, तीन पार्ट्स में फंक्शन करती है, जो आपको कल बहुत सुंदर रूप से बताया भी गया. मन जो सोच रहा है, जो संकल्प उत्पन्न कर रहा है, बुद्धि जो डिसीजन ले रही है कि क्या मुझे ये करना है, अच्छा कर्म है, इसको नुकसान पहुंचाओ. बुद्धि कहेगी मत करो, आप कर्म में नहीं लाएंगे, नेगेटिव डिसीजन, नो एक्शन. आप देखा गरीब व्यक्ति है, मन ने संकल्प किया गरीब व्यक्ति है, इसकी मदद करो. बुद्धि कहेगी अच्छा डिसीजन, अच्छी बात है, इसकी मदद तुम्हें करनी चाहिए. आप उस कार्य को करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं. जब आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, आपकी सोल के ऊपर एक मेमोरी स्क्रैच आ जाता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति देखो तो उसको क्या करो, उसकी मदद करो. और आप एक अच्छी आत्मा बन जाते हैं. आप जब रिपीटेडली करेंगे तो आपको बुद्धि की बात को सुनना नहीं पड़ेगा, देखेंगे ऑटोमेटिकली हेल्प करने लग जाएंगे. तो हमारी आत्मा मन बुद्धि और संस्कार के रूप में कार्य करती रहती है. तभी संज्ञाएं किसको दी जाती हैं? संज्ञाएं किसको दी जाती हैं बताइए. कभी किसी ने सुनना है पुण्य शरीर है ये बहुत? कभी किसी ने सुनना है बताइए ना आप, हाँ या नहीं बताइए. कभी किसी ने सुना कि पुण्य शरीर, हाँ या नहीं? नहीं, होता ही नहीं है. कभी सुना कि बहुत महान शरीर है, पुण्य शरीर है, पाप शरीर है? नहीं, संज्ञाएं हमेशा आत्मा को दी जाती हैं. दैट इज व्हाई क्लियर एविडेंस, हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते तो हम आध्यात्मिकता को कैसे समझ सकते हैं. साइंस भी आप देखो क्लियरली आपको जोर के घंटा बजाकर बता रही है कि अपने यथार्थ रूप को प्रैक्टिकली समझना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है. तो ये हुई एनाटॉमी ऑफ अवर सोल. सेकेंड सब्जेक्ट जो हम फर्स्ट प्रोफेशनल के अंदर पढ़ते हैं वो है हमारी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऑफ, है ना, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी. बॉडी के अंदर क्या केमिकल्स हैं, बॉडी किस तरह कार्य करती है. तब बॉडी किस तरह कार्य करती है, उसी तरह हमारी आत्मा भी मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा, ये हमारी आत्मा की बायोकेमिस्ट्री है. मन अगर अच्छे संकल्प करेगा, बुद्धि अगर प्रॉपर डिसीजन लेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्य सदा अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा होगा. तभी हम लोग यहां पर बार बार क्या बोलते हैं आपको कि अपने मन के अंदर परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है. अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा सुना, लेकिन क्या मेरे मन ने इस चीज को स्वीकारा? आपके मन को अपील किया? जब मन को अपील करेगा तो आपकी वाणी के अंदर से भी वही चीज झलकेगी, वही चीज प्रैक्टिकली एग्जेम्प्लीफाई होगी. तो बहुत जरूरी है कि अपने मन बुद्धि और संस्कार को आत्मा के इन सात गुणों के द्वारा हम लोग एम्पावर करें. परमात्मा शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, है ना। परमात्मा प्यार का सागर है तो मैं आत्मा प्यार स्वरूप हूं क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। परमात्मा खुशी का सागर है तो मैं आत्मा खुशियों का स्वरूप हूं। वो शक्तियों का सागर है तो मैं आत्मा भी शक्ति का स्वरूप हूं। कितनी सिंपल और प्रैक्टिकल बात, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परमात्मा हमारा वो है जो हमारे जीवन का पालनहार है। अगर वो सब चीजों का सागर है तो मैं उसकी संतान, मेरे अंदर वो गुण स्वतः है ही हैं, वो मेरे अंदर हैं, उसको मुझे केवल धारण करना है। लेकिन हम लोग फिर भी नेगेटिव कर्मा के अंदर लगे रहते हैं, गलत कर्म नेगेटिव कर्म हम लोग करते रहते हैं। वाल्मीकि का नाम सुना है सभी ने? वाल्मीकि बहुत बड़े वो होते थे, जिसे कहते हैं डाकू होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बड़े सन्यासियों को पकड़ते थे, मार देते थे, लूट लेते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक दिन उसने 3 सन्यासियों को पकड़ा। तो उन सन्यासियों ने उससे पूछा कि वाल्मीकि एक बात बताओ, तुम हमें पकड़कर क्यों ये करते हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो उसने कहा कि तुम एक बात बताओ, जो कर्म तुम करते हो क्या तुम्हारा परिवार भी उस कर्म का भागी बनेगा? तो उसने कहा, क्यों नहीं बनेगा, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं, मैं उन्हीं के सुख और शांति के लिए कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल मेरे साथ मेरी सब चीजों को शेयर करेंगे। उन्होंने कहा, वो नहीं शेयर करेंगे, तुम जाके पूछ कर आओ। तो उसने कहा, लगता है आप लोग भागना चाहते हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। तो उसने कहा, हम कहीं नहीं भागेंगे, आप अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ। तो उसने कहा, अच्छा फिर भी मैं आप लोगों को बांध देता हूं। तो उसके मन में ये संकल्प आया, उसने उन्हें बांधा ताकि वो भागे ना और अपने परिवार में गया और परिवार में जाके अपनी पत्नी अपने बच्चों से पूछा कि मैं आपके लिए दिन और रात मेहनत करता हूं, आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं देता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे लोगों को मारना भी पड़ता है और ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, तो क्या आप मेरे इस कर्म में मेरे भागी बनेंगे? तो वो दोनों, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सोच में पड़ गए। उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा कि देखो, हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आपके कर्म जो कुकर्म है उन कर्मों के भागी हम क्यों बनेंगे? आपके कर्मों का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा, हम थोड़ी ना भोगेंगे उन कर्मों का फल। वाल्मीकि की आंखों से आंसू आ गए, वो वापस गया और वापस जाकर उन महात्माओं के आगे नतमस्तक हुआ और उसने कहा, बिल्कुल सही बोलते थे कि जो कर्म जो सोच मैं रखूंगा उसका फल किसको उठाना पड़ेगा? मुझे ही उठाना पड़ेगा, कोई भी उसका भागी नहीं बनेगा। और उस दिन उसने प्रण किया कि मैं अपने गलत कर्मों को आज छोड़ता हूं और सत्मार्ग की तरफ मैं अग्रसर होता हूं। फिर उसने ऐसी तपस्या की कि उसके ऊपर दीमक भी लगी, उसके ऊपर सब कुछ लगा, लेकिन तपस्या को कोई नहीं छोड़ पाया। तो आज हम सब आत्माएं जो यहां पर बैठी हैं, हम सबको भी एक बात सोचनी है कि हमारा एक एक संकल्प जो है वो इतनी शक्ति रखता है कि हम उस संकल्प के द्वारा ना केवल अपने अराउंड अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने सारी दुनिया अपने परिवार को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तभी हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें सोल कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग लाइफ की तरफ, फिर पीस एंड लव इन्फॉर्म्स एवरी एक्शन, ऐसा हम लोग जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित करते हैं और कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि अपने संकल्पों की वैल्यू कितनी है? मानते हैं इस बात को या नहीं, बताइए कितनी इंपॉर्टेंट आपकी संकल्पों की वैल्यू है। फिर और आगे हम लोग चलते हैं, जब हम लोग सेकंड प्रोफेशनल के अंदर हम लोग आते हैं तो हम लोग अगले सब्जेक्ट पर जाते हैं जिसके अंदर हम लोग पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, यानी वो डिजीजेस और वो कीटाणु जो हमारे शरीर पे अफेक्ट करते हैं। अब जैसे जैसे शरीर पे बीमारी होती है और शरीर पे अलग अलग कीटाणु अफेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हमारा मन दुखी होता है कभी या नहीं होता, बताइए? होता है, जोर से आवाज आ रही है, हाँ होता है, है? बाकी सबका नहीं होता? अच्छा, आप सब बोल रहे हैं हाँ होता है ना। अच्छा, उसका कारण कौन कौन चाहता है कि एक सेकंड के अंदर आज हम लोग अपने मन को चेंज कर लें? सभी चाहते हैं, एग्रीड ना? केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे और सभी लोग देंगे फटाफट देंगे, क्योंकि समय अनुसार हमारे पास समय थोड़ा सा है। तो मैं आपके सामने ये प्रश्न रखूंगा, देखिए मैं आपको, उससे आपको प्रैक्टिकल आंसर मिल जाएगा कि क्यों मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होती है। हम लोग जब सेकंड प्रोफेशनल में आते हैं, हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं ना, इसी तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन सोल भी है। और हम लोग आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आज हम सब लोग यहां पर, हम सब लोग एक डिसीजन लेते हैं कि हम लोग पिकनिक पर चलेंगे। कहां चलेंगे? पिकनिक पर। और पिकनिक में हम सब लोग, वी ऑल विल गो टुगेदर, हम लोग दो तीन बसेस बुक करेंगे, साथ में खाने पीने को लेकर चलेंगे, यहां से एंजॉय करते हुए हम लोग मे बी जयपुर तक, मे बी कहीं पर हम लोग घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आइडिया कैसा लगा सभी को? मजा आएगा या नहीं आएगा? एग्री एवरीबॉडी? हाँ, ओके ना, बिल्कुल। अब हम इस थॉट के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या लाते हैं? हम आपको ये कहते हैं कि आज हम लोग पिकनिक पर तो जाएंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, पिकनिक पर तो जाएंगे, लेकिन आज हम लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे, आज हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। डेस्टिनेशन मेरी वही है, डेस्टिनेशन मेरी वही है, लेकिन मैंने आपको केवल एक चीज बोली आज कि आज हम लोग एक दूसरे से क्या लगाएंगे। क्या थॉट आता है, क्या चेंज हो जाता है हमारे मन में? बस फटाफट बताते जाइए। हाँ, उनको मैडम कहती है कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगी, आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं उससे आगे कैसे निकल जाऊं? कॉम्पिटिशन आ जाता है, आप देखो कैसे आंसर निकल रहे हैं। स्ट्रेस आता है, नहीं आता? स्ट्रेस आता है। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, हस्बैंड वाइफ साथ में कहीं बैठे बैठे? अच्छा, ये दोनों बैठे। मैं आप दोनों से पूछता हूं, आप सबकी तरफ से पूछता हूं कि आप दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, दो अलग अलग गाड़ी में, हराने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को? डेफिनेटली, जब ये कहते हैं नहीं, लेकिन 90% लोग करेंगे, अगर आप क्लोज मित्र भी हो, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी होगा जब मैं अपने थॉट को, जब मैं अपने थॉट को केवल एक वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, केवल एक वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम जर्नी टू रेस, फ्रॉम जर्नी टू रेस, मेरी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, पूरी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैजिक की तरह। आप देखो कैसे उछलना आने लग गई, जोश आ गया, रेस है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हराना है, मुझे जीतना है। और जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? शायद मुश्किल स्लो डाउन करें, वरना तेजी से आगे निकल जाएंगे। अगर सिग्नल कहीं पर आया, कोई आसपास नहीं खड़ा, तो सिग्नल्स को भी हम लोग जंप कर लेंगे। और रास्ते में जब जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, बेटा कहे कि पापा जरा रुक जाए, कुछ खा पी ले, तो आप कहेंगे अरे छोड़ो खाना, बस एक घंटे के अंदर हम लोग रेस पर पहुंचेंगे और फिर वहां पहुंचकर हम लोग खाएंगे। तो हमारी सारी एंजॉयमेंट, साथ जाने के जो एंजॉयमेंट था, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओनली वन वर्ड चेंजेस द होल क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। तो अगर हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो इस मूल मंत्र को आज यहां से लेकर जाना। जोर से बोलिए, क्या? लाइफ इज नॉट अ रेस। ब्रेक लगा दीजिए आज ही, ब्रेक लगा दीजिए यहीं पर ही। हमें भागना नहीं है, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। हर मोमेंट, हर क्षण पर हमारी जिंदगी के अंदर खुशी है, हमें उसको एंजॉय करना है, हमें अपनी लाइफ को लीड करना है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपनी लाइफ को बना रखा है एक मेडिकल डिवाइस की तरह, जैसे हम लोग प्रोग्राम डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की तरह चाबी भर दी जाती है, हमको कार्य करना है, हमको भागना है, हमको कमाना है। जरूरी है, कार्य करना जरूरी है, लेकिन लाइफ को रेस में कन्वर्ट करेंगे तो रेस के साथ फ्री गिफ्ट जो हमको मिलता है वो है स्ट्रेस, वो है कंपटीशन, वो है जेलेसी, वो है द फीलिंग ऑफ गोइंग अहेड, उसको मुझे हराना है। क्यों हराना है? जब हम लोग साथ जा रहे थे तो हमारे लिए जिंदगी रेस नहीं थी। तो हम लोगों को, हर व्यक्ति को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एंजॉय करते हुए आगे चलना है, आगे जाना है। दूसरी सच्चाई आपके जीवन की, पहला ट्रुथ हुआ लाइफ इज नॉट अ रेस। जब हम लोग जा रहे थे, जब हम लोग जा रहे थे तो उस वक्त हमको खुशी ज्यादा थी चलने के लिए, या जब हम लोग अकेले जा रहे थे तब हम ज्यादा खुश थे? ऑनेस्टली बताइए, सभी लोग बताइए। साथ जा रहे थे, हम लोग जानते भी नहीं है, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज करेंगे, दिल की बात करेंगे। शाम को जब हम आएंगे तो हम दो तीन लोग गए थे, लेकिन 40 फ्रेंड्स हम लोग बनाकर घर पर आते हैं। पहुंचने की खुशी नहीं है वहां पर, लेकिन साथ जाने की खुशी है। रास्ते में अंताक्षरी नहीं खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो खुशी जो है वो हमारे साथ रहने की खुशी थी। तभी आप लोगों से एक बात पूछूं, सभी आंसर करिएगा। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम किसी मंजिल पर जाते हैं, वहां पर क्या लिखा होता है? हैव अ वेरी प्लेजेंट, जोर से बताइए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लिखा होता, हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन, नहीं होता है ना। तो लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? जर्नी इज इंपॉर्टेंट। तो जीवन की दूसरी सच्चाई क्या है? हैप्पीनेस इज अलोंग द जर्नी। खुशी जो है हमारी जिंदगी में हर पल यहां पर इस क्षण है। अगर मैं जिंदगी में अभी खुश नहीं हो सकता तो आप सोचेंगे ना कि मैं हॉल से लेक्चर सुनने के बाद आबू से जाके तब मैं खुश हूंगा। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो जिंदगी में दूसरी सच्चाई, खुशी जो है वो इस क्षण यहां पर है। तो प्रण करते हैं कि खुश रहना है पक्का। सेकेंड टूल, वी आर नॉट इन अ रेस। आज के पास जाए ना तो खाने पर भी जा रहे हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे रेस हो, सब भाग रहे हो, एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए, ना लगता है कि जल्दी जल्दी जाए। सहज ओके, जैसे फरिश्ते जाते हैं। इसका आंसर ही रॉयल्टी। जब हम परमात्मा की संतान है, राजा का जो बच्चा होगा उसकी रॉयल्टी आपने देखी है कैसी होती है? अलग अदा होगी, अलग तरीके से चलेगा, अलग प्रकार से बिहेव करेगा। उससे ये मतलब नहीं 100 लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन कल्चर के अंदर आता जाता है। तो ये कल्चर, ये रॉयल्टी, ये आतुरता नहीं, अपनी रॉयल्टी और बैलेंस हमको अभी से अपनी लाइफ के अंदर लाना है, रॉयल्टी लानी है। और जीवन की तीसरी सच्चाई, तीसरी सच्चाई वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हम जाते हैं, अगर हम जर्नी में ऐसे जाएं तो मजा आएगा जर्नी का या नहीं, बताइए। हाँ, जीवन में ऐसे जाने का मजा है या नहीं है? अरे जब बोझा ही इतना है तो क्या मजा आएगा। इसीलिए जीवन की यात्रा का तीसरी सच्चाई है ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट कैसे? ये ट्रैवल लाइट नहीं, ट्रैवल कहां से लाइट? ट्रैवल कहां से लाइट? मन से लाइट। अपने मन को लाइट रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और हम लोग क्या करते हैं? बैग ऑफ मनी, बैग ऑफ दिस, ये भर भर के हम लोग लेते जाते हैं ना। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही, आपको सुनाता हूं। किसी ने कहा है कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है कागज के पत्ते कमाने के लिए, बीत रही है कागज के पत्ते, पूरा सुन लीजिए फिर बजाइएगा, है ना। जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है कागज के पत्ते कमाने के लिए, क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, ना कब्र में जेब है ना कफन में अलमारी, ना कब्र में जेब है ना कब्र में जेब है ना कफन में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते है ना। तो हम लोगों को जब यहां से जाना है तो हमको क्या ले जाना है अपने साथ? अपनी वैल्यूज, अपने संस्कार। जैसे आपने सुने ना वो एग्जांपल्स, वो वैल्यूज और वो संस्कार हम लोग कैरी करके जाते हैं। तो उन संस्कारों से आप अपने आप को अमीर बनाकर जाइए। ये हुई हमारी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सोल इन वेरी ब्रीफ, समय अनुसार इन वेरी ब्रीफ। तो आज के बाद आर वी इन अ रेस और नॉट, यस और नो? किसी किसी को थोड़ी और लगानी है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, प्लीज रुक जाइए, है ना, अपने लिए रुक जाइए। वी आर नॉट इन अ रेस, वी आर इन अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज हेयर एट दिस मोमेंट। खुशी देते जाइए, खुशी लेते जाइए, है ना। अपने मन को गार्बेज ट्रक नहीं बनाना। एक यंग लड़का था, वो यंग लड़का ऑटो चलाता था, ऑटो चलाता था, हरेक को खुशी देता था, हरेक को पॉजिटिविटी देता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब वो जा रहा था एक सवारी को लेकर, एक और यंग लड़का अपनी BMW को चलाते हुए तेजी से उसको ओवरटेक करके एकदम एक्सीडेंट होते बचा। वो उतरा उस अपनी गाड़ी से और उस यंग लड़के पर चिल्लाने लगा और बोला कि तुम्हें चलानी नहीं आती ऑटो, तुम कैसे चला रहे हो, तुमने ऐसा किया फलाना किया। वो मुस्कुराता रहा उसको देखकर, उसने कुछ बोला ही नहीं। उससे बोला मैं क्षमा चाहता हूं, आप चले जाइए, आगे ध्यान रखूंगा। तो वो चला गया। उसके पीछे सवारी जो एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था बोला, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा क्या हुआ? गलती तो उसकी थी, तेरे को बोलना चाहिए था। तो उसने बोला कि मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। कुछ लोग अपने मन को कूड़े का ट्रक बनाकर रखते हैं। क्या बनाकर रखते हैं? गार्बेज ट्रक बनाकर रखते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो तीन चीजें लेकर निकलते हैं, गुस्सा, निराशा और चिंता। भरा होता है उनके मन के अंदर, जो भी मिला उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा कर दिया, अपनी चिंता उसके ऊपर डाल दी, वो कूड़ा हर एक के ऊपर बिखेरते हुए जाते हैं। लेकिन मैं अपने मन को एक फूलों का बगीचा बनाकर चलता हूं, मैं खुशी लेकर निकलता हूं, मैं लोगों के लिए उत्साह लेकर निकलता हूं, मैं सकारात्मक संकल्प लेकर निकलता हूं। तो वो गार्बेज ट्रक जब कूड़ा मेरे ऊपर डालते हैं तो उनका कूड़ा मैं क्यों स्वीकार करूं? मैं उनके कूड़े को उन्हीं के पास रहने देता हूं और मैं अपने मन से उनको पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक एनर्जी देता हूं। तो अपने मन को हम क्या बनाकर जाएंगे? क्या बनाकर जाएंगे? गार्डन ऑफ फ्लावर है ना, परमात्मा का गार्डन है ना। तो जहां उसके विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हर व्यक्ति को शुभ भावना करके देखनी है, सुन के वाह वाह ताली नहीं बजानी, बाहर निकलते ही पॉजिटिविटी लाकर हर एक को देते जाइए, हर एक के लिए करते जाइए। तो ये हुई हमारी माइंड एक्सरसाइजेस। फिर हम और आगे चलते हैं पैथोलॉजी के बाद, फिर हम आते हैं फार्मेकोलॉजी ऑफ ह्यूमन सोल एंड बॉडी, है ना। फार्मेकोलॉजी में हम लोग दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो आत्मा की दवाई उसको कौन दे सकता है? आत्मा का डॉक्टर कौन होगा? कौन होगा? परम आत्मा या परम शरीर, बताइए। परमात्मा होगा। देखो सेकेंड एविडेंस, परमात्मा को अगर परम शरीर नहीं कहते, परम आत्मा कहते हैं, तो हम उसकी संतान शरीर होंगे या आत्मा होंगे? सिंपल, कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल हम जानते हैं लेकिन वो लाइफ को हम लोग लीड नहीं कर पाते। तो फार्मेकोलॉजी ऑफ ह्यूमन सोल के बारे में बहुत सुंदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जिसमें एक व्यक्ति जो था अपने क्लास के अंदर बैठा था। जैसे मंदिर मस्जिद तो हम लोग जाते हैं, वो प्रोफेसर अपनी क्लास में बोल रहा था कि भाई हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिफिक लोग परमात्मा को नहीं मानते, आप कैसे कहते हो कि साइंस जो है वो परमात्मा को माने? तो वो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि डू यू बिलीव इन गॉड? तो स्टूडेंट कहता है यस सर आई बिलीव इन गॉड। प्रोफेसर कहता है कि डू यू थिंक गॉड इज गुड? स्टूडेंट कहता है यस सर आई थिंक गॉड इज वेरी गुड। स्टूडेंट प्रोफेसर कहता है साइंस सेज यू हैव 5 senses टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू, टेल मी हैव यू एवर सीन गॉड? तुमने देखा है परमात्मा को? उसने कहा नो सर आई हैव नॉट सीन। प्रोफेसर कहता है हैव यू एवर फेल्ट गॉड? हैव यू एवर फॉर दैट मैटर एनी सेंसरी परसेप्शन ऑफ गॉड? स्टूडेंट कहता है नो सर आई डिडंट हैव एनी वन ऑफ देम। ही सेड यू स्टिल बिलीव इन हिम? वो कहता है यस सर आई स्टिल बिलीव इन हिम। प्रोफेसर कहता है सॉरी सन, अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल टेस्टेबल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल साइंस सेज यू डोंट हैव एनी, योर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? तो स्टूडेंट मुस्कुराते हुए बोला कि सर आई ओनली हैव माई फेथ टू बिलीव दैट गॉड डज एग्जिस्ट, मेरा विश्वास है कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है। तो प्रोफेसर कहता है प्रॉब्लम विद साइंस इज दैट इट डज नॉट लिव ऑन फेथ, इट डज नॉट बिलीव ऑन फेथ। एवरीवन इन द क्लास वॉज क्वाइट फॉर अ मिनट। आफ्टर वन मिनट स्टूडेंट सेड इज देर एनी वन इन द क्लास हु हैज एवर सीन प्रोफेसर्स ब्रेन? नो वन अपीयर्स टू हैव डन सो। सो सर isn't anyone in the class who has ever heard professor's brain, felt, touched or smelt professor's brains? No one appears to have done so. So sir, according to the established rules of empirical, stable and demonstrable protocol, science says sir you don't have any brain sir. So with due respect sir, how do we trust your lectures? We don't think that you are speaking, this is coming from somewhere else. So professor was smiling. He said, my dear son, I guess you have to take them on faith. And then student said, that is what I want to say, sir. That link between soul and supreme soul, between man and God is the faith. And that is what keeps the things moving alive. And yahi vishwas jab hum mante hain ki atma, aur dekho, science bhi ab evidence de rahi hai ki there is a supra consciousness which does exist and there are global consciousness project chal raha hai supported by Dr. Pam Reinold, Dr. Melvin Morse, jo keh rahe hai ki yes, there is an entity that does exist that tells you that supra consciousness, supreme soul does exist in this universe. Science is also coming close to it. So it becomes our natural duty to understand that if I am a soul, then my father cannot be supreme body. Wo param sharir nahi ho sakta, wo param atma hi hoga. और उन दोनों का ही कम्युनियन, उन दोनों का ही जो जोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेडिटेशन कहा जाता है।
मेडिटेशन एक हीलिंग एनर्जी, एक हीलिंग वर्ड है जो मेडरी वर्ड से आया है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का कम्युनियन होने के बाद हमारे शरीर और आत्मा दोनों की हीलिंग होती जाती है। तो आज बहुत आवश्यक है कि क्लिनिकल प्रोफेशनल में जब हम आते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करते हैं। आज हम इस अंडरस्टैंडिंग के बाद, एक बेसिक अवेयरनेस के बाद, कि साइंस भी आज स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर चलेगी तो स्व परिवर्तन के द्वारा हम लोग विश्व परिवर्तन का आगाज हम लोग कर सकते हैं। ये कोई बाहर से आकर नहीं करेगा, ये हमको स्वयं अपने अंदर इस अग्नि को ज्वलनशील करना पड़ेगा। तो आप सब लोग इस चीज के लिए तैयार है या नहीं, बताइए। कौन कौन कहता है हाँ करेंगे, हम लोग इस क्षण से करेंगे, है ना। उसके लिए अपने जीवन में साइलेंस को लाना बहुत आवश्यक है। साइलेंस को लाना बहुत आवश्यक पता है क्यों है? बहुत क्यों पावर ऑफ साइलेंस मानी जाती है, क्यों पावर ऑफ साइलेंस का गायन है? मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमको अपना प्रतिबिंब देखना हो, अगर पानी के अंदर हमको अपनी शैडो देखनी हो, अपनी रियल इमेज देखनी हो, तो पानी कैसा होना चाहिए बताइए? बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शीतल होना चाहिए, नॉट इवन दिस मच डिस्टर्बेंस। अगर इतनी भी डिस्टर्बेंस पानी के अंदर होगी ना, तो हम उसको अपने आप को उसके अंदर देख नहीं पाएंगे। इसी तरह उबलता हुआ पानी होगा तो हम उसके अंदर अपने आप को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जब हम लोग अपने मन को देखना चाहते हैं, अपने मन को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है आपने? इसको शमशानी साइलेंस कहते हैं, यानी बिल्कुल साइलेंस। एकांत में और अकेलेपन में फर्क होता है। साइलेंस अकेलापन नहीं होता, अकेलापन चिंता के साथ आता है। एकांत मेरे अंदर की बात है, अकेलापन मेरे बाहर की बात है। तो अपने अंदर जब हम मेडिटेशन को यूज करते हैं, तो मेडिटेशन के द्वारा मेरा मन अखंड शांति के अंदर आता जाता है, डीप साइलेंस के अंदर। और उस मन के अंदर हर थॉट जो मैं इमेज निकालता हूं, वो सकारात्मक, पॉजिटिव और एनर्जेटिक होता है। एक्सपीरियंस करेंगे लास्ट एक मिनट, है ना। तो हम लोग आज इस प्रण के साथ सब लोग डीप साइलेंस के अंदर, जोर नहीं लगाना, हो नहीं रहा, मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं करना, अपने मन के थॉट्स को ऑब्जर्व करें। केवल 30 सेकंड्स के लिए म्यूजिक बजेगा और फिर हम लोग अब बहुत साइलेंस के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर एंटर करेंगे। जो फीटस के अंदर जो प्राण आते हैं वो 8 वीक्स के आसपास, इसको दिखाया गया है कि सोल उसके अंदर एंटर होता है। लेकिन इसका क्लियर प्रूवन स्टडी इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को भी अभी नहीं माना है। तो जो चुरपुर चालू होती है बच्चे के अंदर, वो इसके अराउंड दिखाया गया है। बाकी इस पे एविडेंस थोड़ा और पोर इन होगी, एज एन एक्सेप्टेंस इज कमिंग इन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड एनर्जी इन दिस। आपके प्रश्न को मैंने सुन लिया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में आप पूछ रहे हैं, दैट आल्सो इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एविडेंस, जिसके बारे में एक हमारे साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं, उन्होंने इस पे पूरी बुक भी लिखी हुई है, मेनी लाइव्स एंड मेनी मास्टर्स, इसके बारे में नॉएड ब्रायन वीस, उसके बारे में वो किताब हमने पढ़ी भी है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लियर एविडेंस दैट येस सोल डज एग्जिस्ट, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज हैज बीन यूज एज वन ऑफ द मोडेलिटीज टू forgive yourself and others and liberate your soul. One of the उसको पुरानी चीजों से मुक्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये थेरेपी मानी गई है। बट इसकी 100% सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो।